الحمد لله كفى، الحمد لله كفى، سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، بل في مجلس من خوش خوش قسمت کا تذکرہ کیا جا رہا تھا، جو خود تو مسجد کے باہر ہوتا ہے مگر اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اور ان میں سے ایک شخص یہ ہے جو مسجد سے باہر تو ہوتا ہے مگر دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے. اور کل کی مجلس میں ہم نے اس شخص سے متعلق 3 باتیں بیان کی کہ جو شخص مسجد کے باہر رہتے ہوئے بھی اس کا دل مسجد میں لگا ہوا واقعتاً ہے، اس کو یہ انتظار ہے کہ کب میں مسجد میں پہنچوں گا، تو مشائخ نے فرمایا کہ اس کے اندر 3 چیزیں اور بھی موجود ہیں، اور سب سے پہلی چیز یہ کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، جب کسی سے شدید محبت ہو جاتی ہے تو اس کی نشانیوں سے بھی محبت ہوتی ہے. ماں کا بیٹا اگر ملک سے باہر چلے جاتا ہے یا خدا نخواستہ فوت ہوتا ہے تو اس کے کمرے کو دیکھ کے، اس کے بستر کو دیکھ کے، اس کے کپڑوں کو دیکھ کے بھی روتی ہے، شدید محبت ہوتی ہے. جس سے شدید محبت اس کو دیکھنا ممکن نہیں تو اس کی چیزوں کو دیکھ کر انسان کے دل میں محبت اٹھتی ہے. تو جس شخص کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، سب سے پہلی چیز اس کے بارے میں مشائخ نے یہ بیان کی کہ اس کو اللہ سے محبت ہے. دوسرا یہ کہ اللہ نے اس کے اندر عبادت کا شوق ڈال دیا ہے. مسجد میں اور کوئی کام ہو نہیں سکتا عبادت کے علاوہ، حتیٰ کہ گفتگو کرنے کو بھی شریعت نے ناجائز ہی کہا ہے. مسجد میں دنیاوی گفتگو بھی جائز نہیں، دینی گفتگو اگر ہے تو پھر بھی گنجائش. تو اصل کام مسجد میں عبادت ہی کا ہے، تو جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے اصل میں تو اس کا دل جو ہے وہ عبادت میں اٹکا ہوا ہے. اور تیسری اہم بات یہ کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، چاہے اس کا دماغ یہ بات سمجھے یا نہ سمجھے، اس کے دل کو عالم بالا سے انوارات اخذ کرنے کا کچھ نہ کچھ ملکہ ضرور پیدا ہو گیا ہے. کہ مسجد پہ اللہ تعالیٰ کے انوارات نازل ہوتے ہیں، ہر وہ جگہ جہاں لوگ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو مسجد تو وہ جگہ ہے جہاں مستقل دن میں متواتر لوگ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو وہاں متواتر اللہ کے انوارات نازل ہو رہے ہیں. تو یہ جو دل مسجد میں لگا ہوا ہے، چاہے اس کو علمی طور پہ اس چیز کا ادراک ہو نہ ہو، یہ دل اس لیے لگا ہوا ہے کہ وہ جو عالم بالا کے انوارات اس مسجد میں موجود ہیں، یہ دل اس کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ ان 7 بزرگوں میں سے، ان 7 خوش قسمت ہستیوں میں ایک ہستی وہ بھی ہے جو خود تو مسجد کے باہر مگر اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے. آج کی مجلس میں اسی مبارک حدیث میں جو چوتھا شخص ہے اس کا تذکرہ کرنا مقصود، کہ جس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا، اور یہ وہ شخص ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ اس طرح سے کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی. یہ پکی بات ہے، اگر انسان کو صدقہ کرنے کا شوق نہیں ہے، یعنی طبیعت ایسی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بس میرا پیسہ میرے پاس ہی رہے، تو तो चाहे जितने सजदे कर ले और चाहे कितनी ही दीनी किताबें पढ़ ले, अभी नेक नहीं बना है। कुरान पाक में अल्लाह ने फैसला सुना दिया, लन तनालुल बिर्रा। और जो अरबी जानते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से बताया है कि लफ्ज लन जो है उसका मतलब होता है हर किस नहीं, बहुत ही ज्यादा ताकीद के साथ हर किस नहीं, कि हर किस नहीं तुम नेक बन सकते, हत्ता तुनफिकु, जब तक के खर्च नहीं करोगे। तो नेक आदमी की निशानी सजदे भी हो सकते हैं, किताबें भी हो सकती हैं, मगर असल निशानी खर्च करने का शौक है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि जी खर्च तो अमीर करें, भाई हम क्यों करें, जो खुद ही कसमा पुरसी के आलम में है वो दूसरों को क्या दे सकता है। तो सच्ची बात यह है कि खर्च करने के लिए माल की जरूरत ही कोई नहीं, खर्च करने के लिए शौक की जरूरत है। किसी के पास 10 रुपया है, उसमें से भी वो 1 रुपया निकाल के खर्च कर देता है तो वो खर्च करने वाला कहलाएगा। और किसी के पास 10 अरब रुपया है, उसमें से 1 अरब रुपया खर्च कर देता है तो भी वो भी खर्च करने वाला ही कहलाएगा। दोनों बराबर। नबी अलैहि सलातो वसलाम के सहाबा इकराम के पास खाने को भी कुछ नहीं होता था, वाकईतन खाने को कुछ नहीं होता। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं भूख की वजह से बेहोश पड़ा होता था। तो अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया कि मेरे इन सहाबा को एक मुट्ठी भर जौ किसी के सदका करना, ये और लोगों के ओहद पहाड़ के बराबर सदका करने के बराबर है। तो इसलिए माल होना जरूरी कोई नहीं। जिसके पास 10 रुपए है वो अपने 10 रुपए में से कुछ निकाल के सदका करे, और जिसके पास 10 अरब रुपए है वो अपने 10 अरब रुपए में से निकाल के सदका करे। शौक होना शर्त है माल खर्च करने के लिए। हदीस पाक में आता है बनी इसराइल का एक नेक शख्स था, खर्च करने का शौक रखता था मगर अमीर बिल्कुल ना, पैसे कुछ भी नहीं था, गरीब था। एक मरतबा कहत आ गया उसके इलाके में और हर तरफ जो है वो लोग कसम कुर्सी के आलम, खाने पीने की कोई चीज रही नहीं, बारिश नहीं हुई थी। अपने घर से निकला तो सामने एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी को देखकर दिल में नियत करता है, अपनी कौम की इस हालत को देखकर शौक बड़ा था कि मैं मदद करूं सबकी। तो अपने दिल में ही कहा कि या अल्लाह, ये पहाड़ अगर सोने का होता और ये पहाड़ मेरा होता तो मैं इसमें से एक पैसा भी ना रखता, सारे अपनी कौम पे खर्च कर देता। बस इसने अपने दिल में ये सोचा और अल्लाह से ये बात की। नबी अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने इस आदमी के नामाए आमाल में ये पहाड़ सदका करना लिख दिया। तो सदका करने के लिए तो बिल्कुल 1 रुपया भी ना हो तो भी कर सकता है सदका, अगर वाकई दिल में शौक हो यदि देना है। नहीं भी दिया, उन्हें 1 रुपया नहीं दिया, अल्लाह के प्यारे महबूब फरमा रहे हैं इसके नामा आमाल में एक पहाड़ सोना सदका करने लिखा गया। एक पहाड़ सोना तो अमीर से अमीर आदमी के पास नहीं होता। तो इसलिए सदका करने के लिए माल की जरूरत नहीं है, सदका करने के लिए दिल की जरूरत है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया असल अमीर तो दिल का अमीर है, जिसके दिल में शौक हो कि जो मेरे सामने आ रहा है हर एक की मदद कर दो। कुछ लोग कहते हैं यार कई मरतबा लगता नहीं है जरूरतमंद, मैं क्यों मदद करूं। नबी अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया जो तुम्हारे दर पे आ रहे, एक खजूर से मदद कर दिया करो, अगर कुछ नहीं है तो खाली हाथ में जाना। तो इसलिए ये शौक वाला बंदा ही समझ सकता है कि खाली हाथ नहीं जाने देता है, वरना बंदा यही कहेगा कि भाई ये जरूरतमंद नहीं लग रहा है तो ये लग रहा है, तो ये फला है तो फला नहीं है। भाई अल्लाह ने जो हमें नेमत दी है हम उसके काबिल थे, तो दूसरों को क्यों जज करते हैं कि भाई ये काबिल है या नहीं काबिल इसके। आपने अल्लाह के लिए देना है, बाकी जिसको दे रहे हैं उसका और अल्लाह का मामला है। तो माल खर्च करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, माल खर्च करना उसके लिए दिल होना जरूरी है। हमने मशायख से कहते हुए सुना है कि कुछ लोग मालदार होते हैं और कुछ लोग माल के चौकीदार होते हैं, कि माल होता भी है मगर खर्च करने का शौक नहीं होता, इसलिए पूरी जिंदगी माल की चौकीदारी करते हैं और फिर इस दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं और माल जो है वो रसा उड़ा देते हैं। तो वो रसा से भी रोक के रखता था, नेकी के कामों से भी रोक के रखता था, ये काम उसके, ये माल उसके काम ही नहीं आया। किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि जो माल खा गया उड़ा गया, जो माल बचा गया, जो माल बचा गया वो वरसा को दे गया, और जो माल सदका कर गया वो अपने साथ ले गया, बाद में तो उसी माल का फायदा है। नबी अलैहिस्सलाम के घर में किसी ने एक पूरा बकरा जो है वो हदिया भिजवाया, अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया कि भाई ये हदिया है तो हम भी खाएंगे, और हजरत आयशा से आपने फरमाया तो मांगने वाले आते रहते हैं तो उनको भी दे देना। हजरत आयशा ने देना शुरू कर दिया सबको। आप जब तशरीफ लाए नमाज पढ़ते तो आपने पूछा कि आयशा कितना कुछ बचा भी है या गया, हजरत आयशा ने फरमाया बस एक रान बच गई है। तो आपने फरमाया जो चले गया वो बच गया है, ये नहीं बचा है तो हम इस्तेमाल करेंगे, इसका कुछ फायदा नहीं। जो दे दिया अल्लाह के रास्ते में वो बच गया है। तो कयामत के दिन 7 लोगों को अर्श का साया मिलेगा, उसमें से एक वो है कि वो सदका इस तरह से करता है कि दाएं हाथ से सदका करता है तो बाएं को भी खबर नहीं होती। अल्लाह ताला हमें सदका भी करने की तौफीक अता फरमाए और इस तरह से, इस अच्छी तरह से, इस खामोशी के साथ सदका करने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا فاتحا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.